ओम शांति। प्रश्नों से पार। आज का प्रश्न है, आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए कौन से संकल्पों के साथ योग करें जो उन्हें टचिंग हो जाए। आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए कौन से संकल्पों के साथ योग करे जो उन्हें टचिंग हो जाए। कौन से संकल्पों के साथ योग करे? आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बातें करना। सबसे पहले क्या करना है? सूक्ष्म वतन में या यही स्थूल वतन में जिन जिन आत्माओं को हम चाहते हैं सकाश दे, उनको इमर्ज करना, उनको देखना, उनका आह्वान करना और उनसे बात करना। क्या क्या बात करेंगे? प्रश्न है, आत्माओं को ज्ञान में लाने के लिए कौन से संकल्पों के साथ योग करें जो उन्हें टचिंग हो जाए। तो पहले तो हमने इमर्ज किया, आह्वान किया, देखा और फिर उनसे बात करनी है। कौन सी बात करेंगे और क्या बात करेंगे? उनको याद दिलाना है कि वो कौन है। सबसे पहले तो ये याद दिलाना है कि वो देह नहीं है, वो चैतन्य आत्मा बिंदु है। उनको आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाना, फिर उनको उनके वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाना कि वो कौन है, वो कौन सी आत्माएं हैं। पहले तो आत्माएं हैं और फिर कौन सी आत्माएं हैं। तो क्या बताएंगे उनको? कि तुम सब कौन हो? देव कुल की आत्मा हो, महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, वही आत्माएं हो कि जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वही आत्माएं हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाप से वर्षा लिया था, कल्प पहले भी भगवान को जाना था, पहचाना था, कल्प पहले भी इस यज्ञ में आई थी, कल्प पहले भी भगवान से मिलन मनाया था। परमात्मा साथ, परमात्मा प्रेम, परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा मदद का अनुभव किया था। और केवल अनुभव ही नहीं, दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव कराया था। तुम वही श्रेष्ठ तपस्वी आत्माएं हो। उनको याद दिलाना है उनकी ही तपस्या का, उनकी ही की हुई तपस्या। अभी भूल गई है, अभी विस्मृति में है, अभी संपूर्ण विस्मरण हो गया है उनको। फिर से हम याद दिला रहे कि तुम ये हो। याद दिलाना बहुत आवश्यक है, चाहे मुख से दिलाया जाए, चाहे मनसा से दिलाया जाए। संडे की मुरली, ज्यादा शक्तिशाली कौन सी आत्माएं प्रत्यक्ष होती है किस सेवा से? आठवीं पॉलिश, कौन सी आत्माएं प्रत्यक्ष होती है? मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। तपस्वी मूर्त बन जाओ तो क्या होगी? आत्माएं आएगी, जैसे ज्योति पर परवाने फिदा होते हैं, वैसे आत्माएं आएगी और तपस्वी मूर्त बन जाएगी। ये सब कार्य सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म तल पर करना है। और क्या संकल्प करेंगे आत्माओं के लिए? उनके प्रति शुभ भावना, उनके प्रति शुभ कामना, उनके प्रति हमारे मन में जब तक घृणा छिपी है वो ज्ञान में नहीं आएंगे। उनके प्रति हमारे मन में जब तक अत्यंत मोह का भाव छिपा हुआ है, डीप अटैचमेंट है उन आत्माओं के प्रति, वो ज्ञान में नहीं आएंगे। जिन आत्माओं को ज्ञान में लाना है उनके प्रति हमें वैराग्य, डिटैचमेंट, अनासक्त भाव चाहिए, तो ही हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंच सकेंगे। एक पत्नी अगर याद करे कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए और उसका मोह भी उसमें उतना ही है, उसका मोह ही बाधा है। माँ यदि सोचे बच्चे ज्ञान में आ जाए, उसका जो उनके प्रति मोह है वही बाधा है। परिवार वाले ज्ञान में आ जाए, मोह ही बाधा है। या तो घृणा बाधा है या तो मोह बाधा है। अटैचमेंट चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, अटैचमेंट दो प्रकार की है, एक पॉजिटिव अटैचमेंट, दूसरी है निगेटिव अटैचमेंट। वो क्या है? निगेटिव अटैचमेंट रिपल्शन विकर्षण, एक है आकर्षण एक है विकर्षण। घृणा है, नफरत है, जिसके प्रति घृणा है जिसके प्रति नफरत है जो शत्रु है वो भी एक अटैचमेंट है, वो भी बुद्धि में वही घूमते रहता है। याद किसकी आती है सबसे ज्यादा? मित्रों की और दुश्मनों की। कंस को कौन दिखाई देते रहता था दिन रात? पानी पीता था कृष्ण, खाना खाता था कृष्ण, जो देखता था वहां वही वही दिखाई देता था। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था। वो भी क्या है? एक वो भी एक अटैचमेंट है। दोनों ही भाव नहीं चाहिए, नहीं तो सकाश उन आत्माओं तक नहीं पहुंचेगी। सकाश के लिए चित्त डिटैच चाहिए, सकाश के लिए अनासक्त अवस्था चाहिए, सकाश के लिए सारा फोकस स्व पर नहीं, द अदर इज हेल, दूसरे पर नहीं स्व पर। गीता रामायण नहीं, नष्टो महास्मृति लब्धा, यह अवस्था अटैचमेंट वाली अवस्था है। स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है उसमें, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है और उसके आधार पर सकाश दी जा रही है। अगर ये ज्ञान में आ जाए तो सेंटर को बहुत मदद मिल जाएगी। अगर ये भाई आ जाए तो जमीन दे देगा, अच्छा रिट्रीट सेंटर बन सकता है। संकल्प तो अच्छे है। दादी जानकी जब पहुंची थी विदेश तो बहने योग कर रही थी, यहीं सुनाया था किसी बहन ने। दादी ने पूछा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा हम जगह मिलने के लिए योग कर रहे हैं। जगह नहीं थी उस समय। दादी ने कहा क्या टाइम पास वेस्ट कर रहे हो? वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, न मिले तो भी अच्छा। कहीं पर भी आसक्ति हो तो सकाश नहीं पहुंचेगी व्यक्तियों को नहीं पहुंचेगी, उस स्थान को भी नहीं पहुंचेगी। स्थान से भी डिटैचमेंट, व्यक्तियों से भी डिटैचमेंट और वस्तुओं से भी डिटैचमेंट, तब जाके सकाश वस्तुओं तक, स्थान तक और आत्माओं तक पहुंचेगी। तो आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को स्मृति दिलाना, आत्माओं को रिमाइंड कराना, जैसे जामवंत ने रिमाइंड कराया हनुमान को। क्या रिमाइंड कराया था? तुम पवन पुत्र हो, और क्या रिमाइंड कराया? सूर्य को तुमने खा लिया था, इतनी पावर तुम में है, उसको याद दिलाया। जैसे ही उसे याद आया उसने अपना रूप प्रकट किया। जल्दी लांज गए आश्चर्य नहीं, फिर आश्चर्य नहीं है वो आत्मा क्या करे। इतनी पावर उसमें आ जाती है, हर आत्मा शक्तिशाली है। इच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। हर आत्मा अपने आप में दिव्य है, लक्ष्य है इस दिव्यता की अभिव्यक्ति। The goal is to manifest this divinity. और क्या करें जिससे आत्माओं को टच हो जाए? क्या करें? समय की सूचना, भगवान के आने की सूचना, इस परिवार की सूचना, यज्ञ की सूचना, कौन सा समय चल रहा है, क्या अब हो रहा है, संसार की क्या हालत है उसकी सूचना, उनसे बात करके उन्हीं को बताना तुमने ये सब किया, क्या पाया? तन मन धन, क्या गया, क्या हुआ? सब खो गया। तन मन धन सब कुछ गवा दिया। कितना परसेंट गवाया? 99.99। 0.01% ही बचा है बस, उसको तो अब सफल करो। तो उनको याद दिलाना तुमने क्या पाया है और तुमने क्या खोया है। ये सारा जो किया उसकी ये है निष्पत्ति, ये है सारे भोग, ये है सारे विलास, उसकी ये है उसका परिणाम, ये है भाग दौड़, ये है भागम भाग, ये है भागा दौड़ी, ये है उसका परिणाम। जिनके लिए सब कुछ किया आज कौन है उनमें जो कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं? शायद कोई नहीं। संसार के सारे तथाकथित प्रेम कैसे है, हद के है, सार रहित है, झूठे है, मिथ्या है, उसमें वो सच्चाई है ही नहीं। इसकी उनको स्मृति दिलाना। और क्या स्मृति दिलाएंगे आत्माओं को? कल्प पहले के उनके देव संस्कारों की स्मृति, कल्प पहले के उनके पूज्य स्वरूप की स्मृति। सारा काम भगवान भी जो आके कर रहा है, कौन सा कर रहा है? रिमाइंडिंग, रिमाइंड करा रहा है, उनको रिमाइंड कराना है। पूरा पुनः स्मृतियां जो दब गई है उनको क्या करना है? जागरण, उन स्मृतियों का जागरण, रिफ्रेश करना है। आत्माएं थक गई है। कैसी हो गई आत्माएं? थक चुकी है, संसार भी थक गया है। एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कैनॉट पुट हम्प्टी टुगेदर अगेन, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। बच्चों की कविता है, हम्प्टी डम्प्टी को ऐसा फॉल हुआ, ऐसे गिरे, ऐसा गिरा वो कि ऑल द किंग्स मेन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस कैनॉट पुट हम्प्टी टुगेदर अगेन। ये संसार की स्थिति है। चाहे कितना भी कोई प्रयत्न करे, सारे राजनेता, सारे धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता भी कोशिश करे, हम्प्टी जो गिर चुका है वो पुनः ठीक नहीं हो सकता। हम्प्टी क्या है? नहीं, हम्प्टी कौन है? छोटा सा बच्चा है। ट्विडल डम और ट्विडल डू। तो संसार की आत्माओं को लाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? कुछ सूक्ष्म में काम करना पड़ेगा, कुछ स्थूल में भी काम करना पड़ेगा। स्थूल में क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी रूप से उनका संपर्क जोड़ना पड़ेगा, ताकि उनका कोर्स हो जाए, वो शिविर में आ जाए, मधुबन की पावन भूमि पर आ जाए, उनको यहाँ का ब्रह्मा भोजन उनके मुख में चला जाए किसी भी तरह से। संकल्प से भी भेज सकते हो, पर स्थूल से भेजो तो बहुत अच्छा है। भोग मिल जाए, ब्रह्मा भोजन पहुंच जाए, हृदय तक पहुंचने का मार्ग पेट से चालू होता है, पता है ना? अगर किसी के हृदय तक पहुंचना है तो मार्ग पेट है। और ये इस कला में तो बहने निपुण है। किसी पुरुष को यदि जीतना है, कहावत है, उसके हृदय तक पहुंचना है, तो स्त्री क्या करनी करती है? उसके पेट को प्रसन्न करती है। अर्थात अच्छा अच्छा भोजन पाश में बंद जाता है वो, क्योंकि जहां से भोजन, जहां से बढ़िया मिल जाए, उनके प्रति निगेटिव संकल्प रखना बड़ा ही मुश्किल है। उनको ना कहना कोई चीज के लिए बड़ा मुश्किल है, उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हृदय का मार्ग कहां से चालू होता है? पेट से। इसके लिए पेट को प्रसन्न किया जाए। हाँ, बाद में उनको पता ना, एक बार बन गए, एक बार आ गए, फिर बताओ कि तुम्हें तपस्वी बनना है तो इससे भी वैराग चाहिए, फिर वो दूसरी बात है। वो तो ब्राह्मणों के लिए वो है, पर बाहर वालों के लिए भी मार्ग क्या है? पेट। यहां पर भी जो आत्माएं रह रही है बहुत सारी, कुछ का तो आधार ही वो है। इसके लिए यज्ञ की भी उसके लिए फुल व्यवस्था है। बाबा नहीं चाहते कि यहां से कोई जाए। आज सुबह की साकार मुरली वरदान, तुम यज्ञ रक्षक हो। मंजुबेन, यज्ञ रक्षक की परिभाषा क्या है? अभी भी मुरली सुना के आए हो आप? सुनी किया कि सुनाया? ये है यज्ञ, हम हैं यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ है, हम यज्ञ रक्षक है। योग के पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा ऐसी तार लगाओ करंट कि कोई आत्मा यहां से बाहर ना जा सके। योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी तारें लगाओ कि यहां से कोई उधर ना जा सके, यहां से कोई किनारा ना कर सके। जो ये करने का संकल्प रखता है उसे कहेंगे यज्ञ रक्षक। तो यहां से बाहर न जाने का एक साधन भोजन भी है। एक तो योग भी है, दूसरा बाबा ने जो व्यवस्था अपने तरफ से कर रखी है वो है भोजन। यहां ऐसा भोजन मिल जाए कि उसको उधर की जिलेबी कचोरी कुछ भी याद ना है, यही सारी इच्छा है। मनो इच्छित फल प्राप्त करने देने, ये यज्ञ है। यज्ञ क्या है? मनो इच्छित, मनवांछित फल प्राप्त, जिसकी जो इच्छा है। जो दे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात, जिसकी जो जो इच्छा है वो यहां पूर्ण होगी। जिसको भोजन की इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होगी, जिसको बहुत सेवा करने की इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी, जिसको बहुत ही नाम मान चाहिए उसकी वो भी इच्छा पूरी होगी, जिसको आगे आगे करना है वो भी इच्छा पूरी होगी, जिसको चुप रहना है, इनकॉग्निटो रहना है, अंडरग्राउंड रहना है वो भी इच्छा पूरी होगी। सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला ऐसा ये यज्ञ है। और क्या करे आत्माओं के लिए स्थूल में? उनको गिफ्ट देना, उनको सौगात देना, किचन देना, बुक देना, सीडी देना, पेन ड्राइव देना, लिटरेचर देना, भेजना विशिष्ट दिनों में, उनको विश तोली भोजन, अच्छा भोजन अलग तोली अलग, तोली दे दो। गुरुवार के दिन अगर आते नहीं तो पहुंचाया जाए किसी के द्वारा। और क्या करें, बहुत सारी चीजें, कॉन्फ्रेंस, मधुमन शिविर, घूमना घुमाने लेके आना, बहुत सारी चीजें। स्नेह मिलन सेवा केंद्र पर यहां से जाने के बाद भूल नहीं जाना उनको, बीच बीच में याद रखना, बीच बीच में बुलाते रहना। चीफ गेस्ट बना के बुलाओ तो और ही अच्छा, उनको बिठा देना। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, अगर वो सुनाते रहे अच्छा अच्छा कहते रहे तो खुद एक दिन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आत्माओं के लिए शुभ संकल्प रखना, श्रेष्ठ संकल्प रखना, महान संकल्प रखना ताकि वो आ जाए। दूसरा प्रश्न है, विरोधी आत्माओं को कैसे अविरोधी बनाए? शादी नहीं करने के लिए माता पिता को कैसे सकाश दे और उन्हें कैसे समझाए? तो दो प्रश्न है ये विरोधी आत्माओं को अविरोधी, विरोधी शब्द में ही नकारात्मक ऊर्जा है। पहले तो शब्द को ही हटाओ, कौन विरोधी, किसका विरोधी? हम विश्वामित्र है, हम विश्व कल्याणकारी है, हम सारे विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा है। हमारा सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तो वो हम है। पूरा के पूरा विश्व ची माते घर, ये पूरा विश्व ही मेरा घर है। इधर अपना कौन और पराया कौन, सब मेरे है। तो सबसे पहले तो शब्द ही गलत है, इसको हटाओ। फिर दूसरा, हाँ कुछ आत्माएं अगर बाधा बनती है, हाँ कुछ आत्माएं यदि बार बार रोकती है, अवरोध उत्पन्न करती है, तो उनके लिए भी वही कार्य किया जाए जो पहले बताया। आत्माओं को रोज इमर्ज करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं से माफी मांगो। जरूर तुमने कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो दुख दिया होगा, जरूर ऐसी कोई चलन तुम्हारी नहीं, परंतु तुम जिस संस्था में हो, जिस यज्ञ में हो, वहां का कोई एक व्यक्ति होगा, उसके वजह से उसके मन में विरोध है, उसके लिए भी तुम क्षमा उससे मांगो, मन से, सकाश से आह्वान करके, उनके प्रति चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। कौन सी भावना रहे? शुभ, श्रेष्ठ, महान, क्योंकि अज्ञानी है, क्योंकि परवश है, क्योंकि अधीन है, तो उनका एक रीति से वो निर्दोष है, उन्हें निर्दोष देखना और उनके मन में सकाश देनी है, परमात्मा प्रेम की स्थापना हो जाए, जो अत्यंत नास्तिक है, जो अत्यंत विरोधी है, उनके हृदय में भी गहरे में गहरे तलों में कहीं ना कहीं भगवान से प्रेम तो है ही, चाहे उन्होंने कितना ही उसको छिपा के रखा हुआ है, परंतु आत्मा के हृदय में परमात्मा प्रेम सदैव सदा से है, खाली उसने उसको क्या कर रखा है, ढक रखा है। उस परमात्मा प्रेम की पुनः स्थापना, पुनः जागृति करना, डिवाइन लव और डिवाइन माइट, ये दो चीजों की उन्हें सकाश देनी है, उनके हृदय में परमात्मा प्रेम और परमात्मा शक्तियां आ जाए, क्योंकि परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए भी क्या चाहिए, पावर चाहिए, बहुत, हर एक नहीं चल सकता है, बहुत हिम्मत चाहिए। Two ways diverged in the wood, and I took the one less travelled, and that has made all the difference. अंग्रेजी कवि लिखता है कि मैं जगह खड़ा हूँ, वहाँ पर दो मार्ग है, एक मार्ग जहाँ पर बहुत भीड़ है, उस दिन मुरली में था, लास्ट संडे की पुरुषार्थ का मार्ग, इसमें भीड़ बहुत कम है, देहत का मार्ग है, तुम्हें गाइड बनना है। I took the one less travelled, परंतु मैंने उस मार्ग को चुना है जो कि एकदम दुर्गम, जिस पर कोई चला नहीं, अनट्रॉडन, अनचार्टेड, उस पथ को मैंने चुना है, तो इस पथ पर चलना भी इतना आसान नहीं है, पग पग पर काटे हैं, शूल बिछे हैं, तो उन आत्माओं को शक्ति भी तो देनी पड़ेगी, या वैसे ही ज्ञान में आ गए और यहां आके दुखी, पहले उधर दुखी थे अज्ञान में, फिर ज्ञान में दुखी, और ज्ञान का दुख अज्ञान के दुख से कहीं बड़ा है, क्योंकि यहां एक अहंकार भी है, अब हम ज्ञानी हैं, और इस ज्ञान के अहंकार के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, उस दुख का बोझ और भार भी ज्यादा है। वहां तो फिर भी कह सकते हैं हम दुखी है, अगर यहां कहे तो सारा ब्राह्मण समाज आंखें खोल खोल के देखते रहता है, क्योंकि तुम दुखी जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि एडवाइस सबके पास है, अगर कोई कह दे मैं दुखी हूं तो दूसरे एकदम टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, अपनी सलाह लेकर कि मैं इसको ठीक करूंगा, इसको राह मैं ही दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा इसको श्रीमत क्या होती है, श्रीमत का ऐसा डोज इसको पिलाएंगे कि बस निडाल हो जाएगा बेचारा। दूसरों को श्रीमत सुनाने की अत्याधिक इच्छा तो विरोधी आत्माओं को अविरोधी, पहले तो विरोध शब्द को हटाओ, उनके प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में हो, घृणा की भावना ना हो। उन्होंने अब तक बहुत सारे विरोध किए हैं, वो सारा बुद्धि में रखती है आत्मा, हम ये कर रहे थे उन्होंने ऐसा किया, हमने वो किया तो ये उन्होंने किया, सारा विरोध उन्होंने जो जो किया, जो जो अपमान किया, ग्लानी की, निंदा की, वो सारा बुद्धि में घूमते रहता है। महाराष्ट्र में संत हुए थे कभी, संत ज्ञानेश्वर, सारा जीवन भर दिखाया है कि एक व्यक्ति था, उसने उनका इतना विरोध किया करते ही रहा अंत तक, पर लास्ट में जब उनकी शरण में आया तो उन्होंने उसको ऐसे माफ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब जब वो विरोध कर रहा था तब भी उसके प्रति निगेटिविटी नहीं थी, तो काम उधर नहीं इधर करना है, अपने ऊपर, यहां पर। क्योंकि हम ही बाधा है उसके ज्ञान में आने में। हमारे संकल्प, हमारी नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिव स्मृतियां और उसके प्रति एक होपलेस भाव कि ये आ भी जाए तो क्या करेगा, ये तो चल नहीं पाएगा, ये तो इसके हमको इतनी मुश्किल हो रही तो इनका क्या होगा, पहले से ही सोच के रखा है हम इतने पावरफुल और हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो पता नहीं इसका क्या होगा, ना आए तो ही अच्छा, कभी कभी ऐसा भी संकल्प रहता है। दूसरा प्रश्न है शादी नहीं करने के लिए माता पिता को कैसे सकाश दे और उन्हें कैसे समझाए। बोलो क्या उत्तर है। हाँ क्या करना है विनोद भाई, क्या होना चाहिए? हाँ पहले तो इच्छा है कहीं ना कहीं, जिसमें जितनी ज्यादा इच्छा उसको ये प्रश्न उतना ज्यादा सताता है, और जिसमें इच्छा है उसको चाहे कितना भी रोको, कितनी भी सलाह दो, वो नहीं रुकेगा, और जिसकी इच्छा नहीं है उसको कुछ भी करो चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए वो नहीं हिलेगा। फिर भी जहां माता पिता का प्रश्न है वहां थोड़ी सा सेंसिटिव इश्यू है। शंकराचार्य 8 साल का था, संन्यास लेना था, परंतु मां ने बिल्कुल मना कर दिया, तो युक्ति रची ना मगरमच्छ की। उसके बाद में मां ने जाने का उसको परमिशन दी, परंतु उसने ये कहा कि मैं जब आप शरीर छोड़ोगी उस समय मैं आ जाऊंगा, और दिखाया है जब मां उसके शरीर छोड़ने को होती है तब वो वहां आ जाता है। अंत्येष्टा क्रिया वही करता है, अंत्येष्टि क्रिया, फ्यूनरल राइट्स, जबकि सन्यासी होता है फिर भी समाज विरोध भी करता है। तो प्रश्न है कि उन्हें कैसे सकाश दे और उन्हें कैसे समझाए। सबसे इसमें कुछ 2-3 बातें हैं। सबसे पहला तो हमारा अपना ही मोह बाधा है उनके प्रति, जो है बहुत ज्यादा लगाव। दूसरा, उनको यह आश्वासन दिया जाए कि हम जिस मार्ग पर निकल पड़े अब वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी आशा है, होप रहती है कि आ जाए, उनको लगे ये हाथ से निकल गया है। एक तो आशा रहती है कि आ जाए, कोई भी आ जाए। ये इच्छा उन माँ बाप में भी है जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में नहीं है उनमें भी है, कोई अच्छी आ जाए, ब्रह्मा कुमारी लेके आओ तो अच्छा है, साथ में ही मुरली सुनने जाएंगे, साथ में ही बैठेंगे, साथ में ही ब्रह्मा भोजन भी होगा, कोई झंझट नहीं, पर पक्की एकदम ऐसी ढूंढना पक्की वाली। बीके मैट्रिमोनी साइट। ज्ञानियों में भी, माँ बाप में भी है तो अज्ञानियों में, माँ बाप में भी है। तो पहले तो उनको ये आश्वासन हो जाए कि ये हिलने वाला नहीं है अब। तीसरा, उनके मन में यह चिंता होती है कि इसका क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। ये भी उनकी एक रियल कंसर्न होता है कि इसकी देखभाल कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, ये अगर बीमार पड़ गया तो कौन देखेगा इसको। और उनके पास में दूसरी आध्यात्मिक संस्थाओं के बहुत सारे अनुभव भी है, इसी संस्था के बहुत सारे दूसरे बुजुर्गों के अनुभव भी है, अगर वो ज्ञानी है तो ये भी है। इसलिए सोचते हैं कि कोई मिल जाए तो अच्छा है, दोनों चलो साथ साथ, ज्ञान में पवित्र जीवन बिताओ, गंधर्व विवाह करो, ये उनका कंसर्न है। तीसरा, चौथी एक बात और है कि उनको चिंता होती है कि ये व्यक्ति तो अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, आर्थिक दृष्टिया, इसको पैसे कहां से आएंगे, इसका तो अपना कुछ घर नहीं है, जॉब स्थिर नहीं है। तो उनको इस रीति से भी आश्वासन देना है कि हम अपने पैरों पर भी खड़े हैं। अगर किसी कुमार ने पूछा है बाहर से तो उसके लिए वो ये भी अपने माँ बाप को आश्वासन दे दे कि मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आर्थिक रीति से इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और रही भोजन की का प्रश्न, तो अगर ऐसा ना हो कि उसको भोजन ही बनाना नहीं आता है तो माँ बाप को और ज्यादा चिंता होती है, अब खाएगा कहाँ से, ये सेंटर से बंद हो गया, पहले आता था अब बंद हो गया, अब क्या करें। वो तो इतना एक्सपर्ट खुद ही कुक बन जाए कि माँ बाप को खिलाए, तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो ये भी स्किल है एक, कुकिंग पाकशास्त्र। हर रीति से, पैसों की रीति से इंडिपेंडेंट कर दे, भोजन बनाना, भोजन में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दे। अच्छा, एक 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 उनका कंसर्न ये भी होता है कि ये जो है ये हमारी देखभाल करेगा कि नहीं, हमको कौन देखेगा। उनको ये बता दो, अरे दूसरे जो है आपके जो ज्ञान में नहीं चलते उनसे ज्यादा तो हम ही करने वाले हैं देखभाल, निश्चिंत रहो, वो छोड़ देंगे पर हम नहीं छोड़ेंगे, और सच्ची देखभाल तो यही होने वाली है। प्रश्न फिर भी है, सकाश कैसे दे। सकाश देने के लिए सबसे पहले तो जिसको सकाश देनी है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। ये मोह है उसमें बहुत, इसको थोड़ा अलग करो। उनको आत्माएं देखो, ये आत्माएं हैं, जैसे बाकी आत्माएं वैसे ये भी आत्माएं हैं। इस जन्म में माँ बाप है, किसी और जन्म में कुछ और थे, जरूरी नहीं है कि हर जन्म में यही माँ बाप होंगे। वो जन्मजात जो मोह है इनेट, पहले तो उसको नष्ट करो, उसके बाद ही उनका कल्याण हो सकता है। संडे की मुरली, सात बातें। पहला, स्वयं स्वतंत्र और उड़ती कला, लाइट और उड़ती कला। दूसरा, बुद्धि को खाली करो, वो ज्ञान में आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, अब तक क्यों नहीं आए, बुद्धि को खाली करो इन सभी बातों से। तीसरा, स्वयं शक्तिशाली, स्वयं शक्ति रूप। चौथा, सर्वशक्तिवान साथी। पांचवा, शुभ भावना। छठवा, याद। अपने याद के चार्ट को बढ़ाओ, याद से बंधनों को काटो, और अंतिम खुद को छुड़ाओ तो वो छूटेंगे। चिंता नहीं करो, चिंतन नहीं करो, प्रश्न नहीं उठाओ, ये क्यों, वो कैसे, अब कहां, कैसे, तो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। उनका यदि कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप होकर, सर्वशक्तिवान को स्वाति बनाकर उनके प्रति शुभ भावना रखो, तब वो ज्ञान में आएंगे। उनके ज्ञान के मार्ग में हम ही तो कांटा बनकर खड़े हैं, हमारा ही मोह। तो उन्हें सकाश देना, वही सारी बातें जो ऊपर बताई, आह्वान करना, बात करना, माफी मांगना, माफ करना, शुक्रिया करना, धन्यवाद देना इस जीवन में जिन्होंने जन्म दिया है, इस साकार देह को जिन्होंने लाया है, जिसमें हमने बैठकर भगवान को पाया, उनका उसके लिए भी धन्यवाद। अगला प्रश्न, शुरू से मेरा संस्कार रहा है कि मुझे किसी को स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता, ना मैं किसी को छूती हूँ, ना ही किसी का छूना मुझे पसंद है, मैं अपने बच्चों को भी गले नहीं लगाती, लेकिन बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट बहुत है, 2 साल तक के बच्चों के ही करीब जाती हूँ, अभी बाबा की श्रीमत से और ही डिटैच रहती हूँ, मेरे युगल मुझे इस बारे में कहते हैं कि क्या कोई पुराने संस्कार, क्या यह कोई पुराना संस्कार है या साइकिक प्रॉब्लम है। प्रश्न क्या है, खाली इतना प्रश्न है कि ये है या वो है, तो उत्तर है कि दोनों है, साइकिक प्रॉब्लम भी कहो या तो पुराना संस्कार कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी तो, परंतु यहाँ विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक तो ये स्पर्श करना तो बाहरी प्रक्रिया है, अटैचमेंट तो डीपर होता है, टच, मेंटल टच फिजिकल टच से कई गुना अधिक है। जहां मेंटल टच की इच्छा खत्म हो गई है वहां फिजिकल टच तो होगा ही नहीं। बाबा जब तन में आते हैं, दादी के बाप दादा कितना डिटैच है उस देह से भी, और कितना डिटैच है वो बाकी सब से भी, कितना टच कर रहे हैं चीजों को, बहुत कम। यहां बात खाली छोटे बच्चे या बड़ा इससे नहीं है, स्त्री या पुरुष इससे है ही नहीं, बात देह की है। जब देह के वास्तविक स्वरूप को आत्मा जान लेती है तो स्पर्श का सवाल ही नहीं है। जब अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा जान लेती है, निज स्वरूप को, तो वहां कौन सा स्पर्श और कैसा स्पर्श। देह तो मिट्टी है, इस मिट्टी के स्पर्श से क्या संवेदना। आत्मा का योग कम जब होगा तब देह आकर्षित करेगा, जब योग की शक्तिशाली स्टेज होगी तो देह का तो स्मरण ही नहीं होगा, देह याद ही नहीं आएगा। तो इसको कुछ भी कहो, उत्तर है अपने मेंटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट को बढ़ाना है। आत्मा इमोशनली कहीं ना कहीं स्लेव है, इमोशनल स्लेवरी है, भावनात्मक दासता है किसी ना किसी आत्मा की। उसमें गहरा मोह है, क्योंकि जब तक मोह नहीं तब तक, जब जितना गहरा मोह, मोह के कारण ही व्यक्ति स्पर्श करना चाहता है, फील करना चाहता है। उसी व्यक्ति के प्रति जो अत्यंत मोह है, बाद में जब घृणा उत्पन्न हो जाती है उसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती हो। पति पत्नी जो पहले एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, बाद में जब झगड़े होने लगते हैं तो मुंह भी नहीं देखना चाहते, एक तो मैं तुमको मार दूंगा या खुद को मार दूंगा, ये अनुभव है लोगों के, या तो तुमको मार दूंगा या खुद को मार दूंगा, इतनी घृणा भर जाती है। ऐसे ही थोड़ी ना इतने डिवोर्स होते रहते हैं संसार में। डिवोर्स मतलब बिल्कुल तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम उधर हम इधर, बिल्कुल रहना ही नहीं है, देखना ही नहीं है चेहरा, कितनी घृणा। ये वही व्यक्ति है लव मैरिज वाला, परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाला। तो बात बाहरी स्पर्श की है ही नहीं, ये तो परिधि है, परिधि पर काम नहीं करो, केंद्र पर काम करो। हाँ तो उसमें क्या काम, ऑर्बिट पर नहीं, सर्कमफरेंस पर नहीं, पॉइंट पर, केंद्र पर काम करना है। केंद्र है आत्मा अभिमान, परिधि है देहाभिमान। बॉडी कॉन्शियस के तल पर काम नहीं करो तो वो उत्तर भी बॉडी कॉन्शियस वाले निकलेंगे कि देह से हाथ नहीं लगाना है क्या करूं, उससे कुछ नहीं होता है, लगाओ नहीं लगाओ उससे क्या लेना देना। मेन तो मुख्य केंद्र है वो, तो वैसे हो गया। एक जैन साध्वी है, एक दूसरे महाराज से मिलने आई तो उसकी शॉल उसके शॉल से लग रही थी, उसने कहा बिल्कुल मेरी शॉल तुम्हारी शॉल से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। शायद मन ही स्पर्श हो रहा है, शायद मन में ही दमित सप्रेस्ड रिप्रेस्ड अभी भी वासना भरी है जो अभिव्यक्त हो रही है बाहर। डॉक्टर्स कितने पेशेंट्स को देखते हैं, नर्स कितने पेशेंट्स को देखती है, हाथ लगाती है, कहीं अटैचमेंट होता है। एक नर्स है छोटे बच्चे के वार्ड में, 50 बच्चे है उस वार्ड में, हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में, सारे बच्चे को दिन रात देखती रहती है, हाथ भी लगाती है, इंजेक्शन लेती है, कुछ लेती है, अटैचमेंट रहता नहीं है उसका। याद उसको किसकी रहती है, अपने बच्चे की जो बीमार है घर पे, उसको पता नहीं क्या क्या करेगी, पकड़ लेगी, गले से लगाएगी, कुछ कुछ करेगी। वैसा ये इस पेशेंट को कहां करती है। तो जैसे उसकी यहां डिटैचमेंट है वैसे ही डिटैचमेंट यहां हो सबके साथ। अंदर में ही डिटैचमेंट लानी है, बाहर का कोई लेना देना नहीं है। शरीर के तल पर जो हो रहा है दैट इज बट परिणाम, मन के तल का। मन एक्साइटमेंट है तो शरीर में एक्साइटमेंट है, मन में काम है तो शरीर में उत्तेजना है, मन में क्रोध है तो शरीर में क्रोध है, मन में लोभ है तो शरीर उस तरह कार्य करता है, मन में अहंकार है तो शरीर के हाव भाव भी वैसे ही है, तुम ऐसे करते हैं। पत्रकार लोग बहुत करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर 76, द्वापर से जो विकर्म हम करते आए हैं उससे ही हम संगम युग पर संगम युग पर चुक्तु करते हैं, या संगम पर जो विकर्म करते हैं वह मर्ज रूप में साथ जाते हैं और द्वापर में इमर्ज होकर उसकी सजा हमें हर जन्म में कलयुग आखिर तक भोगते हैं। रिकॉर्डिंग तो अभी हो रही है ना, प्रश्न बहुत जबरदस्त है। क्या बोल रहे हैं कि द्वापर से जो विकर्म हम करते आए हैं उसे हम संगम युग पर चुक्तु करते हैं, या फिर संगम पर जो विकर्म करते हैं वो मर्ज रूप में साथ जाते हैं और द्वापर से इमर्ज होकर उसकी सजा हम हर जन्म में कलयुग आखिर तक भोगते हैं। नहीं, दोनों ठीक नहीं है। एक साइकिल इंडिपेंडेंट साइकिल है, ये साइकिल यहां जब पूरा हो जाता है इसका सब कुछ यहां समाप्त होता है। यहां आत्मा सारे हिसाब किताब चुकतुक कर ही परमधाम जाती है, वहां आत्मा डोरमेंट रहती। हाँ, इसमें अरेंजमेंट में ये है, अरेंजमेंट अगर ये आत्मा है सर्कल और ये बीज है तो यहां पर बहुत सारा नीचे है और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स बहुत सारे लेयर्स है। रीअरेंजिंग होता है खाली, ये संस्कार यहाँ है, ये पाप विकर्म, ये बड़ा सर्कल, आत्मा यहाँ है। संगम युग एंड मतलब यहाँ इस कल्प के सारे हिसाब किताब सारे चुकतु, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ का साइकिल पूरा हुआ। ये साइकिल आगे साइकिल में नहीं जाएगा क्योंकि आत्मा परमधाम में सारे हिसाब किताब चुकतु करके यहाँ परमधाम पहुंची। हाँ, परमधाम पहुंचने के बाद यहाँ कोई सारे संस्कार डोरमेंट है, सुषुप्त अवस्था में। जब आत्मा नीचे आती है तो सबसे पहले उसके ये आत्मा संगम पर है, ये उसका किए हुए पाप विकर्म है जो भी है, पहले चालू यहाँ से होगा खुलना। यहाँ सब देव धर्म के संस्कार है, श्रेष्ठ संस्कार है, महान संस्कार है। यहाँ से आत्मा में वो सूक्ष्म में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है और जैसे जैसे आत्मा नीचे उतरते जाती है फिर ये भी संस्कार प्रकट होने लगते हैं यहाँ के, पर उनके साथ साथ वो भी संस्कार प्रकट होने लगते हैं जो पुरुषार्थ के हैं, जो विकर्म विनाश के हैं, विकर्म के भी और विकर्म विनाश के भी। अल्टीमेट सेंस में तो एक संपूर्ण रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुका है, ठीक है, वो फाइनल रिकॉर्डिंग है, वो बहुत बड़ा पिक्चर है यहाँ, पर उसके बीच में एक बड़ा ड्रामा है, एक छोटा ड्रामा है। एक तो फाइनल ड्रामा है जिसमें उतना ही पुरुषार्थ आत्मा करेगी जितना उसने कल पहले किया था, इसके लिए अभी ये कोई नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा करूं कम करूं, ज्यादा कम वो सब उतना ही करेगी। हाँ, पर एक छोटा ड्रामा भी है जिसमें हम ये डिसाइड कर सकते निर्णायक मैं हूं कि मैं पुरुषार्थ से सारे भाग्य को बदल दूंगा। तो आत्मा जब यहां है, एक कल्प जैसे संगम युग पूरा हुआ, यहां का सारा हिसाब किताब यहीं पूरा हो गया, यहां से आत्मा वहां लेके गई यहां के पाप और फिर वो वहां इमर्ज हुए, ये वाली चीज नहीं होगी, ये यहां का यहीं पूरा हो जाएगा, वहां से फ्रेश सब पाप करना वो सब चालू होगा। परंतु हाँ, संस्कार यहां के वहां पर बहुत सूक्ष्म रीति से मर्ज रूप में रहेंगे, परंतु इधर के पाप वहां चुकतु होंगे, चुकतु नहीं होंगे, कार्मिक अकाउंट यहीं सेटल होगा तुम्हारा सारा, यहाँ सारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत गहरा है, इस पे बहुत सारी वर्कशॉप चाहिए इस पे। तो वो आत्मा ऊपर जब जा रही है परमधाम, सब हिसाब किताब चुकतु हो चुके हैं, संपूर्ण पावन हो चुकी है, पावन बनने की दो विधि है, योग या सजा, तो वो सब करके आत्मा एकदम संपूर्ण पवित्र ऐसी अवस्था में परमधाम पहुंचेगी। और यहाँ पे सभी आत्माएं सेम है, सभी पवित्र है, हाँ, पर एक एक आत्मा में सुषुप्त संस्कार छिपे हुए हैं यहाँ पर, और वो भी एकदम प्रकट नहीं होंगे, संस्कार हिसाब किताब नहीं, संस्कार। और हाँ, मतलब वो बीच में अंदर दबे रह जाएंगे, फिर द्वापर से जैसे जैसे ट्रिगर आते जाएंगे, जैसे जैसे उत्तेजना आती जाएगी, वैसे वैसे वो निकलते जाएंगे बाहर, एक एक संस्कार निकलते जाएंगे, सूक्ष्म रहेंगे। परंतु यहाँ बात है हिसाब किताब की, हिसाब किताब अलग और संस्कार अलग, संस्कारों का रहना अलग और हिसाब किताब चुकतु होना अलग। वो संस्कार द्वापर से सारे निकलने चालू हो जाएंगे, पर उसमें और एक प्रश्न ये भी है कि फिर दूसरी आत्माओं के साथ जो हिसाब है, पर वो तो यहाँ बाबा ने ये भी कहा है कि यहाँ तुम सब कुछ चुकतु करके जाते हो, क्या एक कल्प का दूसरी कल्प में चलेगा? ऐसा नहीं है। संस्कार भले एकदम गहरे में रहेंगे, लेयर्स आफ्टर लेयर फॉर्म हो जाएगी बहुत सारी। प्रश्न इन्होंने जिस ढंग से पूछा है इसका उत्तर तो यही है कि यहाँ से वहां नहीं जाएगा, कि ये इन्होंने पूछा है कि यहाँ हमने पाप किया, ठीक है, जहाँ झूठ बोला, तो क्या वो झूठ द्वापर में इमर्ज होगा और उसकी सजा द्वापर में मिलेगी? नहीं, वो यहीं मिल जाएगी, यहीं पर तुमको धर्मराज के दंडे, धर्मराज पूरी हिसाब किताब चुक तू अपने स्मृति पाप की, वो सारा यहीं आ जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो ये है। ओम शांति।